नमस्कार भारत, तारीख 17 जनवरी, दिन मंगलवार, मैं हूं मोहनलाल शर्मा। उत्तर प्रदेश में अपने बेटे अखिलेश से साइकिल चुनाव निशान की लड़ाई हारे मुलायम सिंह यादव अब क्या करेंगे?
ये डिपेंड करेगा कि आने वाले दिन में मुलायम सिंह जी किस तरह से इस बात को लेते हैं। काफी अखिलेश जी के खिलाफ जा रहे थे, धीरे धीरे वो रिकंसाइल करेंगे और वो किसी भी हालत में ये नहीं चाहेंगे कि बीजेपी आ जाए।
साल भर पहले रोहित वेमुला ने की थी आत्महत्या, उनकी माँ किस तरह से उन्हें याद करती है? पंजाब के पूर्व कांग्रेसी मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केजरीवाल पर साधा निशाना।
केजरीवाल को आता तो है नहीं, तो बुजदिल आदमी है, तो ये आना चाह रहा है चीफ मिनिस्टर बनके, पर बनना चाह रहा है एक बार देख के कि उसकी गवर्नमेंट बनेगी या नहीं, फिर ये छोड़ के आएगा।
कार्यक्रम में होगी अखबारों की समीक्षा भी, लेकिन थोड़ा सा ठहर कर पहले मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार, अमर शर्मा से। चुनाव आयोग ने फैसला किया है कि समाजवादी पार्टी और इसके चुनाव चिन्ह पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का अधिकार है। पार्टी और साइकिल चुनाव चिन्ह पर अधिकार को लेकर पिता मुलायम सिंह यादव और बेटे अखिलेश यादव के बीच पिछले कई दिनों से खींचतान चल रही थी, जिसके बाद मामला चुनाव आयोग में पहुंचा। दोनों पक्षों ने अपने अपने समर्थकों की चिट्ठी चुनाव आयोग को सौंपी और अब फैसला अखिलेश के हक में आया है। जर्मनी और फ्रांस के नेताओं ने अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद यूरोप का बचाव किया है। दरअसल ट्रंप ने ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के फैसले की प्रशंसा की और कहा कि उन्हें यकीन है कि दूसरे देश भी ऐसा करेंगे। जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने कहा है कि यूरोप की एकता ही ट्रंप की टिप्पणी का सबसे मुकम्मल जवाब होगा। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने के लिए अपनी नीतियों के तहत और अपनी खुद की पहचान के लिए यूरोप का संघर्ष जारी रहेगा। वहीं पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओला ने कहा कि यूरोप ट्रांस एटलांटिक सहयोग को जारी रखने में हमेशा इच्छुक रहेगा, लेकिन अपने हितों और मूल्यों के आधार पर वो अपना रास्ता तय करेगा। फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओला ने कहा,
L'Europe sera toujours prête à poursuivre la coopération transatlantique.
यूरोप ट्रांस एटलांटिक सहयोग को जारी रखने के लिए हमेशा तैयार रहेगा, लेकिन उसके फायदे और मूल्यों पर आधारित होगा। यूरोप की बाहरी लोगों के सलाह की जरूरत नहीं है कि उसे क्या करना है। यूरोप में हमारी संख्या काफी है ये तय करने के लिए कि सही फैसले कैसे लिए जाएं। फ्रांसवा ओला के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। एरोस्पेस कंपनी रोल्स रॉयस का कहना है कि रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों में ब्रिटेन, अमरीका और ब्राजील के अधिकारियों के साथ $8 अरब के समझौते के लिए वह सैद्धांतिक तौर पर तैयार हो गई है। रॉल्स रॉयस ब्रिटेन की कंपनी है और जेट विमान, पानी के जहाज और परमाणु पनडुब्बियों के इंजन बनाती है। कंपनी ने कहा कि ये समझौता इंडोनेशिया और चीन समेत विदेशों में स्थित कई बाजारों में उनके बिचौलियों से जुड़े अपराधों से संबंधित हैं। कंपनी ने कहा है कि इस समस्या के बारे में उसने 2012 में ब्रिटिश अधिकारियों को आगाह कर दिया था और आगे भी पूरा सहयोग जारी रखेगी। रॉल्स रॉयस पूरे साल का परिणाम अगले महीने जारी करेगी और बाजार को इस समझौते के परिणामों के बारे में बताएगी। मैक्सिको के किंटाना रू राज्य के प्लाया देल कार्मेन में एक संगीत समारोह के दौरान एक बंदूकधारी की गोली से 5 लोगों की मौत हो गई। किंटाना रू के अटॉर्नी जनरल मिगवेल एंजेस पेस्ट के मुताबिक मारे जाने वाले लोगों में 2 कनाडाई नागरिक, 1 इतालवी और 1 कोलंबिया का नागरिक है। उन्होंने बताया कि गोलीबारी के कारण मची भगदड़ में एक महिला की मौत हो गई और 15 लोग घायल हुए हैं। गोलीबारी की घटना ब्लू पैरेट क्लब में बीपीएम म्यूजिक फेस्टिवल के दौरान हुई है। बीपीएम फेस्टिवल के आयोजकों का कहना है कि मारे गए लोगों में 3 लोग सुरक्षाकर्मी हैं जिनकी जान लोगों को बचाने में गई। घटनास्थल पर मौजूद एक अमरीकी संगीतकार पत्रकार वलेरी ली ने बताया,
All of a sudden we heard 4 to 5 very clear shots and everyone
अचानक हमने 4 से 5 गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी। सब लोग यकायक जानने के लिए रुक गए कि क्या हुआ, और जो हुआ उसे लोग तुरंत भापकर मुख्य गेट और पीछे के रास्ते से बाहर निकलने के लिए भागने लगे। हम लोग पीछे झुककर बैठ गए और ये देखने के इंतजार में कि क्या हो रहा है। वलेरी ली के शब्द। तुर्की की मीडिया के मुताबिक नए साल के मौके पर इस्तांबुल में एक नाइट क्लब में हमले का मुख्य संदिग्ध इस्तांबुल के एसनयिरूत जिले में गिरफ्तार कर लिया गया है। माना जा रहा है कि रैना क्लब में 34 साल के अब्दुल कादिर मशारीपोव ने हमला किया था, जिसमें 39 लोगों की मौत हो गई थी। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत और आज मैं हूं आपके साथ मोहनलाल शर्मा। लंबी जद्दोजहद के बाद समाजवादी पार्टी में आखिरकार ये तय हो गया कि उसके असली नेता अब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ही हैं। कल देर शाम चुनाव आयोग ने इस पर अपनी मुहर लगा दी। चुनाव आयोग ने पार्टी और पार्टी के चुनाव चिन्ह दोनों पर अखिलेश यादव धड़े का दावा सही माना। ये फैसला मुलायम सिंह यादव धड़े के लिए एक झटके की तरह है। वहीं आज से उत्तर प्रदेश में चुनावी प्रक्रिया भी शुरू हो रही है और पहले चरण के चुनाव के लिए आज से नामांकन शुरू हो रहा है। चुनावी गलियारे में कयास है कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस व राष्ट्रीय लोकदल के साथ होने वाले गठबंधन पर भी एक दो दिन में शायद पर्दा उठ जाए। बड़ा सवाल यह है कि मुलायम खेमा असली समाजवादी पार्टी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरेगा या फिर कोई और रास्ता चुनेगा। यही जानने की कोशिश की है समीर आत्मज मिश्र ने अपनी इस रिपोर्ट में।
समाजवादी पार्टी में साइकिल चुनाव निशान की लड़ाई यूं तो परिवार के भीतर की लड़ाई थी, लेकिन जब चुनाव आयोग ने इसका फैसला अखिलेश के हक में सुनाया तो कार्यकर्ताओं ने इसका जश्न चुनावी जीत के रूप में मनाया। नारे लगाए गए, पटाखे छोड़े गए और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई गई। वहीं अखिलेश यादव भी इस जीत के बाद पहला आशीर्वाद लेने अपने पिता मुलायम सिंह यादव के पास गए, जो इस लड़ाई में उनके सीधे प्रतिद्वंद्वी थे। लखनऊ के विक्रमादित्य मार्ग पर स्थित समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर सुबह से ही गहमागहमी थी। सुबह सुबह मुलायम सिंह यादव अखिलेश की आलोचना काफी सख्त भाषा में कर चुके थे, जिसका परिणाम ये हुआ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कमरे के बाहर लगी उनकी नेम प्लेट के नीचे अखिलेश के नाम की भी पट्टी लगा दी गई। हालांकि शाम तक इसे चुनाव आयोग ने भी अपनी स्वीकृति दे दी। वहीं दिल्ली में इस जीत से खुश दिखे रामगोपाल यादव ने कांग्रेस के साथ गठबंधन के भी कुछ सूत्र खोले, लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी भी 403 सीटों पर ही चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता वीरेंद्र मदान कहते हैं,
403 विधानसभा में 403 प्रत्याशियों की तैयारियां हो रही हैं। अभी कुछ दिन पूर्व अगर आपको याद हो तो हमारी प्रदेश चुनाव समिति की मैराथन बैठक 3 दिन यहाँ लखनऊ में चली थी और 403 विधानसभाओं पे 203 के पैनल सेंट्रल स्क्रीनिंग कमेटी को भेजे गए हैं। और रही बात ये आज जो जजमेंट आया है, माननीय चुनाव आयोग ने जो निर्णय सुनाया है, तो ये वैसे तो समाजवादी पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है, लेकिन जिस तरह से पिछले 3-4 महीने से लूड़ा कुश्ती चल रही थी तो निश्चित तौर पे जो फैसला आया है बिल्कुल ठीक फैसला है।
हालांकि जानकारों का कहना है कि गठबंधन के लिए कांग्रेस की शर्त ये थी कि वो अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी के साथ ही चुनावी मैदान में जाना चाहती थी और अब ये रास्ता साफ हो गया है। यही नहीं, बताया ये भी जा रहा है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस और RLD को सम्मानजनक सीटें भी दे रही है। ऐसे में गठबंधन पर औपचारिक मुहर ही लगना अब बाकी है। लेकिन सवाल ये है कि चुनाव आयोग से लड़ाई हार चुका मुलायम खेमा अब क्या करेगा और बिना मुलायम के होने वाले गठबंधन को इसका कितना फायदा मिल सकेगा। लखनऊ के वरिष्ठ पत्रकार श्रवण शुक्ल कहते हैं,
उस तरह से उसकी भरपाई नहीं हो पाई, क्योंकि एक चीज यहाँ पर ये समझने वाली है कि कांग्रेस को भी कभी भी मुसलमानों ने, खासतौर से यूपी के मुसलमानों ने माफ नहीं किया। बाबरी मस्जिद के डिमोलिशन को वो जितना बीजेपी को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं उतना ही कांग्रेस को भी मानते हैं कि अगर राव गवर्नमेंट ने उस समय टाइमली एक्ट कर दिया होता तो शायद बाबरी मस्जिद बच सकती थी, क्योंकि कांग्रेस के पास तो देखिए लूज करने को कुछ है नहीं, गेन करने के सिवा। तो उसका इस गठबंधन का मुस्लिम मतों पे क्या असर पड़ता है इनकी ये भी देखने वाली बात होगी। मुलायम आज भी मुसलमानों के रहनुमा हैं, अखिलेश वो रहनुमा नहीं बनता है। जिस तरीके से मुलायम ने अपना स्टेटमेंट दिया है कि एंटी मुस्लिम है, इसके पहले भी वो एक्यूज कर चुके हैं अखिलेश को, तो उसका क्या मैसेज जाएगा मुस्लिम मासेस में ये भी देखना बाकी है।
बहरहाल गठबंधन होगा या नहीं इसका फैसला आज या कल हो जाएगा, लेकिन असली सवाल अभी यही है कि क्या अखाड़े के पहलवान और राजनीति के कुशल खिलाड़ी मुलायम सिंह यादव बेटे के हाथों मिली हार को चुपचाप स्वीकार कर लेंगे या फिर बेटे को पछाड़ने के लिए उनके पास अभी कोई और दांव है। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
चुनाव आयोग का फैसला आने तक समाजवादी पार्टी में असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। अखिलेश यादव का धड़ा कई विकल्पों के आधार पर तैयारी में जुटा था, लेकिन अब स्थितियां बदल गई हैं। हमारे सहयोगी वात्सल राय ने लखनऊ में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार सुनीता एरॉन से बात की और सबसे पहले यही पूछा कि क्या चुनाव आयोग का फैसला अखिलेश के लिए राहत लेकर आया है।
बहुत बड़ी राहत की बात है ना, क्योंकि एक बारी पार्टी में स्प्लिट हो जाए, स्प्लिट के बाद अगर आपके पास सिंबल भी ना हो, मतलब इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट। दूसरा ये है कि अब अलायंस जो वो करना चाहते हैं कांग्रेस के साथ, उसमें थोड़ी आसानी हो जाएगी। नहीं तो कांग्रेस भी एक्सप्लॉइट करती सिचुएशन को कि आपके पास सिंबल भी नहीं, आपकी पार्टी भी टूट गई है।
चुनाव आयोग से अखिलेश यादव को राहत मिल गई है, लेकिन जो लोग लॉयलिस्ट हैं मुलायम सिंह यादव के, लंबे टाइम से पार्टी में जुड़े रहे हैं, खासतौर पर वोटर, क्या वहाँ कुछ असर होगा?
देखिए, अब ये डिपेंड करेगा कि आने वाले दिन में मुलायम सिंह जी किस तरह से इस बात को लेते हैं। आज तो वो काफी अखिलेश जी के खिलाफ जा रहे थे, बट मुझे लगता है धीरे धीरे वो रिकनसाइल करेंगे और वो किसी भी हालत में ये नहीं चाहेंगे कि बीजेपी आ जाए। मुझे लगता है कि थोड़े दिनों में उनका एक साइलेंट मैसेज जाएगा अपने सपोर्टर्स को। जब आप कहते हैं कि बहुत लोग जो टिकट मांग रहे थे वो लोग उनके साथ रहे, ऐसा नहीं है। जब पार्टी बनी थी उस टाइम के जो लोग थे वो भी जाके अखिलेश जी के साथ खड़े हो गए थे। हमारा ये मानना है कि बिना मुलायम सिंह जी के मर्जी के वो नहीं जा सकते थे। जैसे कि किरण मोहन नंदा हैं, देवती रमन सिंह जी हैं, ये वो लोग हैं जो हमेशा से मुलायम सिंह जी के साथ रहे हैं। और वो जिस दिन उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था वो उस दिन वहां पे मंच पे मौजूद थे, तो बड़ा क्लियर लगता है कि कहीं ना कहीं एक मैसेज था कि आप लोग जाइए और इलेक्ट करिए।
समाजवादी पार्टी को जो लोग पहचानते हैं, मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव, अखिलेश यादव, तीन बड़े चेहरे समाजवादी पार्टी की एक तरीके से पहचान रहे हैं, अब अखिलेश के साथ कौन से बड़े चेहरे होंगे जिनके नाम के आधार पर जो वोटर निकलता है वोट देता है?
हर पोस्टर में मुलायम सिंह जी का तो चेहरा रहेगा, जिन लोगों की आपस में बातचीत हो जाती है, तो शिवपाल जी का भी रहेगा। अखिलेश जी ने कहा था कि फैमिली के लोग जो हैं वो हमेशा हम साथ ही रहेंगे। ये सारा जो कुछ है वो आउटसाइडर्स की वजह से है और हमारे निशाने पे भी आउटसाइडर्स है। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है, यंगर जनरेशन ऑफ यादव परिवार, बहुत बड़ा परिवार है, वो आपको ज्यादा दिखाई देगा। पॉलिटिक्स में अधिकतर राइजिंग सन को ही सैल्यूट करते हैं लोग।
अब जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की स्थिति आप देख रही हैं, आज से नॉमिनेशन शुरू हो जाएंगे पहले चरण के लिए, क्या स्थिति अब आपको नजर आ रही है? भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के बीच समाजवादी पार्टी कहाँ खड़ी है?
सबसे पहली बात तो अब ट्रायंगुलर कंटेस्ट होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने बहुत समय ये झगड़े में गया है, उनका कैंडिडेट्स को लेके भी कंफ्यूजन है अभी, बट अंदर ही अंदर ये लोग कुछ काम कर रहे थे। समाजवादी पार्टी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अभी तक तो एडवांटेज बीजेपी उसको देखा जा रहा है। मायावती जी की भी मुश्किलें थोड़ी बढ़ जाएंगी अब, क्योंकि जो मुस्लिम्स हैं अब उनके पास एक ऑप्शन समाजवादी पार्टी भी खड़ी हो गई है, अभी तक नहीं थी।
परिवार की जो लड़ाई थी उसमें शुरुआती दौर में अखिलेश यादव के साथ सहानुभूति थी, क्या अब चुनाव आयोग के फैसले के बाद कोई इस तरह का सहानुभूति का फैक्टर या जीत का फैक्टर, क्या कोई फैक्टर इनके साथ होगा?
अगर आप कुछ पुराने इलेक्शन रिजल्ट्स को देखें या आप गवर्नमेंट्स को देखें, तो अखिलेश पहले इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर हैं जो एक फैक्टर है इस चुनाव में। तो मैं ये कहूँ कि कोई सिंपथी उनके साथ रहेगी, सिंपथी के बलबूते पे वो नहीं विन कर पाएंगे। उनको फिर से बड़ी मेहनत करके कांग्रेस और जो भी उनके पार्टनर्स होंगे उनके साथ एक डेवलपमेंट एजेंडा पे ही उनको ये इलेक्शन जीतना पड़ेगा।
वरिष्ठ पत्रकार सुनीता एरॉन विश्लेषण कर रही थी कि समाजवादी पार्टी में आगे की रणनीति क्या होगी और चाचा भतीजे पिता पुत्र अब आगे क्या कर सकते हैं, भविष्य की राह उनकी क्या होगी। और यहीं पर अब अखबारों के पन्ने भी पलट लेते हैं, और जहां तक हम समझ रहे हैं कि आज अखबारों की सबसे बड़ी खबर भी समाजवादी पार्टी का चुनाव निशान ही है। अमर शर्मा मौजूद हैं, अमर क्या कहते हैं अखबार?
जी मोहनलाल जी, जैसा आप देख रहे हैं कि तमाम अखबार जो हिंदी और अंग्रेजी के आपके सामने
पटे पड़े हैं,
इसमें पहली खबर अखिलेश यादव को सपा और साइकिल अखिलेश की, तमाम यही हेडलाइंस है सब में। टाइम्स ऑफ इंडिया की भी ये पहली खबर है और तमाम अखबारों ने इसे तवज्जो दी है। हिंदुस्तान टाइम्स ने 5 कॉलम में खबर को छापा है और 2 कॉलम में तस्वीर लगाई है, जिसमें अखिलेश यादव गाजियाबाद में हुए एक साइकिल रैली में साइकिल चला रहे हैं, जैसा आप देख सकते हैं। हिंदुस्तान ने दिया हेडिंग सपा और साइकिल अखिलेश की, तमाम और यही हेडलाइन अमर उजाला में भी है। द हिंदू की पहली खबर है जीएसटी के बारे में। पिछले कई दशकों से सबसे अहम टैक्स सुधार यानी जीएसटी पहले की योजना के मुताबिक अब 1 अप्रैल से नहीं बल्कि 1 जुलाई से लागू की जाएगी, क्योंकि केंद्र तथा राज्यों के बीच टैक्सेशन से जुड़े अधिकारों को लेकर अभी सारे विवाद सुलझाए नहीं जा सके हैं। और कल ये वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसकी घोषणा की है। और हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के मुताबिक पूर्वी दिल्ली में परसों जो गिरफ्तार किया गया एक शख्स, जिसे गिरफ्तार किया है कथित तौर पर बच्चों के यौन शोषण के मामले में, सुनील रस्तोगी नाम के शख्स को, ये पिछले 15 सालों में 40 बार जेल जा चुका है। उत्तराखंड के रुद्रपुर में इसके परिवार से अखबार के संवाददाता ने बात की है और अखबार के मुताबिक इसकी पत्नी का कहना है कि वो पीठ की बीमारी से परेशान है और बिस्तर में है और उसने कई बार पहले देखा था कि वो बच्चियों को गलत तरीके से छूता है लेकिन उसने नज़रअंदाज किया था लेकिन अब उसे खुशी है कि वो पकड़ा गया है। वहीं इंडियन एक्सप्रेस अखबार की खबर के मुताबिक अगर हवा में प्रदूषण खतरनाक स्तर तक बढ़ जाता है यानी हवा को प्रदूषित करने वाले PM 2.5 पर्टिकुलेट मैटर अगर ये 300 ग्राम से ज़्यादा हो जाते हैं तो सड़कों पर यातायात को कम करने के लिए ऑड इवन को फिर से लागू किया जा सकता है और पर्यावरण मंत्रालय ने इस योजना को लागू करने के लिए कहा है जिसके मुताबिक दिल्ली और NCR में अगर ये प्रदूषण बढ़ता है इतना इस स्तर तक तो 48 घंटे के अंदर ऑड इवन योजना को दोबारा लागू करेगी सरकार। ऐसा केंद्र सरकार की योजना है
और दिल्ली सरकार इसे दो बार लागू भी कर चुकी है
जी। और हिंदुस्तान अखबार के मुताबिक कि दिल्ली के पुलिस कमिश्नर आलोक वर्मा CBI निदेशक बनने की दौड़ में सबसे आगे हैं और इस कमेटी ने उनका चुनाव किया है इस नाम का।
बहुत बहुत शुक्रिया अमर शर्मा अखबारों की मुख्य सुर्खियां पढ़ने के लिए।
नमस्कार भारत शॉर्टवेव 49, 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 5875, 7430, 9560, 11995 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर।
आप सुन रहे हैं BBC हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत। आज से ठीक एक साल पहले हैदराबाद की सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्र रोहित वेमुला ने खुदकुशी कर ली थी। उनकी आत्महत्या का मुद्दा पूरे देश में छाया रहा था, अखबारों की सुर्खियां बना था। उनका नाम दलित आंदोलन की पहचान के साथ जुड़ गया लेकिन रोहित की मां उन्हें अलग तरीके से याद करती हैं। रोहित की मां से हमारे सहयोगी इमरान कुरैशी ने बात की, सुनिए उनकी ये रिपोर्ट।
ठीक एक साल पहले आज के दिन रोहित वेमुला का नाम देश में कोई नहीं जानता था लेकिन उनकी आत्महत्या के बाद ना सिर्फ देश में हर कोई जानता है बल्कि सारे देश में दलित आंदोलन का वो चेहरा बन गए हैं। उनकी मौत के बाद उनकी मां राधिका वेमुला एक साधारण दलित महिला से आंदोलन की मां में तब्दील हो गई हैं। उन्हें हर आंदोलनकारी राधिका अम्मा बुलाता है। उन्होंने BBC से बातचीत में कहा कि रोहित को वो किस तरह से याद करती हैं। उसको मैं बहुत तरह से याद करती हूँ। वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था लेकिन उसमें खूबियत ये थी कि वो किसी को भी मेरे खिलाफ बुरी बात नहीं सहन कर सकता था। मुझे हमारे अपनाए हुए माँ के रिश्तेदार मेरे खिलाफ बहुत कुछ कहते या मेरे पति नशे में मस्त होकर मुझे मारते थे। उन दिनों वो सिर्फ 13-14 साल का था और तभी से वो बर्दाश्त नहीं कर पाता था और वो फौरन मेरी रक्षा करने के लिए सामने आ जाता था। ये थे राधिका वेमुला के शब्द। रोहित के मौत के बाद राधिका वेमुला देश के बहुत सारे हिस्सों में गईं जहां दलितों के खिलाफ अत्याचार किया गया था। उनको तभी पता चला कि बेइंसाफी सिर्फ उनके बेटे के साथ ही नहीं बल्कि दूसरे दलितों के साथ भी हो रही थी। राधिका का मानना है कि हर दलित की शिक्षा होनी चाहिए और वो राजनीति में आए ताकि अपने हक के लिए लड़ सकें। राधिका ये भी मानती हैं कि उनको ये सुनकर दुख हुआ जब एक जांच आयोग ने कहा कि वो दलित ही नहीं हैं। राधिका कहती हैं,
रोकने वाला कमिश्नर
वो आयोग को हमारे परिवार के बारे में कुछ नहीं पता था। उस आयोग को हमारे लिए 10 मिनट का वक्त भी देना मुश्किल था। तो वो किस तरह उस फैसले पर पहुंची कि हम दलित ही नहीं हैं? ये तो BJP की एक साजिश थी। ये थे राधिका वेमुला के शब्द। राधिका ये भी कहती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दलितों के लिए वादे भी एक साजिश है वोट लेने के लिए। लेकिन राधिका कहती हैं कि उनको बुद्ध धर्म अपनाने के बाद बहुत शांति मिली है क्योंकि उस धर्म में जातिवाद नहीं है। बहरहाल राधिका के बोलने के तरीके से एक बात स्पष्ट होती है कि वो दलित आंदोलन में सक्रिय रहेंगी। बेंगलुरु से इमरान कुरैशी।
छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या का साल भर पूरा हो गया है। उत्तर प्रदेश चुनावों का जिक्र हम कार्यक्रम के शुरुआत में कर चुके हैं, अब रुख पंजाब का करते हैं, जहां का राजनीतिक पारा तेजी से बढ़ता जा रहा है। पंजाब में 4 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन सत्ता में वापसी का दम भर रहा है। पहली बार विधानसभा चुनाव में उतरी आम आदमी पार्टी भी सरकार बनाने का दावा ठोक रही है। वहीं कांग्रेस भी जीत के दावे कर रही है। कांग्रेस के अभियान की अगुवाई कर रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह का दावा है कि वो आखिरी बार चुनाव मैदान में हैं और जीत का इरादा बनाए हुए हैं। हमारे सहयोगी वात्सल राय ने पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से बात की और सबसे पहले यही पूछा कि क्या उनके लिए ये बैटल ऑफ लाइफ है।
उनके लिए बैटल फॉर लाइफ होगी, बादलों के लिए, हमारे लिए नहीं। कोई बैटल फॉर लाइफ, आज पोजीशन जो पंजाब की है, अकाली बीजेपी इज टोटली डाउन, आम इज फास्ट गोइंग डाउन, हमारी पोजीशन तो इतनी स्ट्रांग है, तो मैं तो अब देख रहा हूँ कि हमें 2/3 मेजोरिटी मिले।
आपके सामने एक चुनौती खड़ी करने की कोशिश की जा रही है, क्या इसी वजह से आप कह रहे हैं कि आप बादल के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, लंबी जाएंगे?
नहीं, आई एम गोइंग टू लंबी फॉर 2 रीजंस। चुनौती कोई नहीं है, पटियाला मेरा घर है, मैंने अपनी पॉलिटिक्स वहां से 47 साल पहले शुरू की थी और आज मैं लास्ट अपनी बैटल, लास्ट पॉलिटिकल लड़ाई लड़ रहा हूं और मैं लास्ट बैटल अपनी पटियाला से ही, जहां से मैंने शुरू किया वहीं मैं खत्म करना चाहता हूं। हमारी फैमिली यहां 300 साल रही है। जहां तक लंबी है, उसका बाद में मुझे ख्याल आया कि ये जो आदमी है मिस्टर बादल, इसने इतना डैमेज कर दिया पंजाब को पिछले 10 साल में, जो किया है इसने, इसका बदला एक किस्म का हम लेंगे उसको हरा के।
आम आदमी पार्टी आपके फैसलों पर सवाल उठा रही है और मैंने कई बार देखा है कि ट्विटर पर भी अरविंद केजरीवाल के साथ आपकी लंबी बहस होती है।
केजरीवाल को कौन रोकता है इसको, वो चीफ मिनिस्टर है, मैं फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हूँ। जो केजरीवाल आ जाए मैदान में, पता लग जाएगा पंजाब को कि कौन पॉपुलर है कौन नहीं है पॉपुलर। केजरीवाल को आता तो है नहीं, तो बुजदिल आदमी है, ये आना चाह रहा है चीफ मिनिस्टर बन के, पर बनना चाह रहा है एक बार देख के उसकी गवर्नमेंट बनेगी या नहीं, फिर ये छोड़ के आएगा। इसमें इतनी हिम्मत नहीं लड़ाई लड़ने की। आए आज, अगर अपनी पॉपुलैरिटी दिखानी है तो मैं लड़ रहा हूँ, बादल लड़ रहा है, ये भी आए लंबी में।
एक आकलन ये भी पेश किया जाता है कि आम आदमी पार्टी से कांग्रेस को, आपके प्रोस्पेक्ट को नुकसान हो सकता है।
बिल्कुल जीरो, ये बात सही है। 2014 में जब पार्लियामेंट इलेक्शन आई, उस समय इनकी पोजीशन हाई थी, हमें नजर नहीं आ रहा था कुछ। ये जो गुस्सा है, जो रोष है नौजवानों में, उन्होंने कह दिया कि हमने अकाली देख लिए, बीजेपी देख लिए, कांग्रेस देख लिए, इनको भी देख लो। बट वो तो 2 साल 2.5 साल में तो बहुत नीचे जा रही है इनकी पोजीशन, दिल्ली की गवर्नमेंट देख के और यहाँ भी जो जिस तरीके से माहौल बना रहे हैं, तो ये तो एक कहने की बातें कुछ और है और असलियत कुछ और है।
नवजोत सिंह सिद्धू आ गए हैं।
नवजोत को मैं बचपन से जानता हूँ, जब वो छोटा सा बच्चा था और जब वो क्रिकेट सीखता था। इनकी फैमिली तो पटियाला की फैमिली, हमारे साथ बहुत तालुकात इनके रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी है कि वो आ गई। अब उनकी वाइफ थी वहाँ से एमएलए फ्रॉम अमृतसर ईस्ट, अब नवजोत जी लड़ेंगे उसको, अमृतसर ईस्ट को, दोनों को। इनफैक्ट आई प्रॉमिस मिस्टर सिद्धू ऑल्सो, हम इनको योगदान देंगे अपने पंजाब में। बाकी तो क्या अंडरस्टैंडिंग हुई है, कुछ आई हैव नॉट हर्ड एनी अंडरस्टैंडिंग। इन्होंने अनकंडीशनली ज्वाइन किया है और इलेक्शन लड़ रहे हैं।
पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह से बात कर रहे थे हमारे सहयोगी वात्सल्य राय। पंजाब से निकलिए और रुख करते हैं पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर का। विधानसभा चुनावों की घोषणा के बाद सत्ताधारी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में ताल ठोंक कर आमने सामने है। विधानसभा की 7 सीटों के लिए 4 और 8 मार्च को मतदान होने हैं। मणिपुर में मुख्यमंत्री इबोबी सिंह के नेतृत्व में पिछले 15 सालों से कांग्रेस की सरकार चल रही है, जबकि राज्य में कई सारे संवेदनशील मुद्दे हैं जिनका अभी तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकल सका है। पिछले 70 दिनों से राज्य में आर्थिक नाकाबंदी जारी है। इन सब के बीच बीजेपी दावा कर रही है कि इस बार मणिपुर में उसकी पार्टी की सरकार होगी। दिलीप कुमार शर्मा की रिपोर्ट।
असम में 15 साल लगातार शासन में रही कांग्रेस के खिलाफ जबरदस्त जीत हासिल करने वाली बीजेपी को लगता है कि मणिपुर विधानसभा चुनाव में भी उसे ऐसी ही कामयाबी मिलेगी। वहीं 2012 के विधानसभा चुनाव में 42 सीटों पर जीत के साथ पूर्ण बहुमत हासिल करने वाली कांग्रेस प्रदेश में विपक्ष नहीं होने का दम भर रही है, लेकिन इस बार उसका सीधा मुकाबला बीजेपी से है। कांग्रेस 15 साल में किए गए विकास के मुद्दे को लेकर मैदान में उतरेगी, वहीं बीजेपी कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार मुक्त और सुशासन के वादे के साथ चुनाव लड़ना चाहती है। मणिपुर में चुनाव के नतीजे घाटी की 40 सीटों से तय होते हैं। पहाड़ों पर बसे नगा समुदाय के साथ घाटी में रहने वाले मैतेई समुदाय का हमेशा टकराव रहा है और यहाँ राजनीति इसी को लेकर होती है। मणिपुर बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर आर के रंजन कहते हैं,
राज्य में सुशासन के साथ ही पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना हमारा प्रमुख काम होगा। कानून व्यवस्था में सुधार लाया जाएगा, साथ ही पहाड़ी और घाटी के बीच संपर्क व्यवस्था को सुधार करने पर जोर दिया जाएगा ताकि दोनों इलाके के लोगों के बीच की गलतफहमी को दूर किया जा सके। कांग्रेस ने पिछले 15 सालों में पहाड़ी क्षेत्र के लिए कुछ भी नहीं किया। ये थे मणिपुर बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर आर के रंजन के शब्द।
नगा लोगों के विरोध की वजह ये भी रही है कि राज्य प्रशासन और प्रदेश की राजनीति में हमेशा मैतेई समुदाय का ही दबदबा रहा है। मणिपुर की करीब 31 लाख आबादी में 63% मैतेई हैं। दरअसल ईवोबी सरकार ने नगा बहुल इलाकों वाले पहाड़ी जिलों में विभाजन कर कुछ नए जिले बना दिए हैं, जिसको लेकर यूनाइटेड नगा काउंसिल के बैनर तले विभिन्न नगा संगठन आर्थिक नाकाबंदी के जरिए कड़ा विरोध कर रहे हैं। इस नाकाबंदी के कारण घाटी तक आवश्यक सामग्रियां नहीं पहुंच पा रही है और लोगों में भारी नाराजगी है। कांग्रेस ने अब इसे सेंटिमेंट गेम बना दिया है। इम्फाल फ्री प्रेस के संपादक प्रदीप फंजोबम कहते हैं,
और कम्युनिटी डिवाइड जो है उसको थोड़ा रिस्क लेके उसको पॉलिसी तब पॉलिसी इंट्रोड्यूस करके इसको न्यूट्रलाइज करना था, वो उसने अचीव नहीं किया। इधर अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत सीरियस है, 7 लाख अनएम्प्लॉयड यूथ है।
उधर बीजेपी नेताओं में टिकट बंटवारे के मसले पर टकराव की काफी खबरें सामने आ रही है। पार्टी ने हाल के उपचुनाव में पहली बार 2 सीटों पर जीत दर्ज करते हुए प्रदेश में अपना खाता खोला था, लेकिन उनमें से एक विधायक बाद में कांग्रेस में शामिल हो गया। मणिपुर चुनाव में इस बार मुख्य तौर पर मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है, लेकिन फिलहाल प्रदेश का जो राजनीतिक माहौल है इसमें बीजेपी के लिए सत्ता की राह आसान नहीं दिख रही। हालांकि उसने सत्ताधारी कांग्रेस के समक्ष एक कड़ी चुनौती जरूर खड़ी कर दी है। दिलीप कुमार शर्मा, BBC गुवाहाटी।
और मणिपुर की इस रिपोर्ट के बाद अब कार्यक्रम में सुनते हैं खेल की खबरें सुमिरनप्रीत कौर से।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं सुमिरनप्रीत कौर। पहले बात आज शुरू हुए ऑस्ट्रेलियन ओपन की। पहले राउंड में के निशिकोरी ने हराया एंड्रे कुज़नेत्सोव को, एंडी मरे ने इलिया मार्चेंको को, रॉजर फेडरर ने जर्गन मेल्जर को। वहीं अगर महिला खिलाड़ियों की बात करें तो वर्ल्ड नंबर 1 एंजेलिक कर्बर ने हराया लीसिया सुरेंको को, वहीं दूसरी तरफ वीनस विलियम्स ने हराया कैटरीना कोज़लोवा को। ग्रेट ब्रिटेन के एंडी मरे ने कहा कि वर्ल्ड नंबर 95 यूक्रेन के इलिया मार्चेंको के साथ मैच आसान नहीं था।
खेल मुश्किल था और इलिया मार्चेंको बहुत अग्रेसिव थे, वहाँ की कंडीशंस भी टफ थी, बॉल भी बहुत तेजी से आ जा रही थी, तो मुश्किल था पर बस जीत गया। अब मेरा अगला मुकाबला है रूस के एंड्रे रुबलेव के साथ। मैंने उनके साथ खेला नहीं है पर उन्हें देखा है, वो एक उभरते हुए टेनिस खिलाड़ी है।
अब बात क्रिकेट की। पुणे में हुए पहले अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच में भारत ने इंग्लैंड को 3 विकेट से हराया। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैचेस में भारतीय टीम की कप्तानी की कमान संभालने वाले विराट कोहली के लिए ये अच्छी शुरुआत है। पूर्व क्रिकेटर विजय दहिया कहते हैं कि कप्तानी की वजह से उनकी बैटिंग पर कोई असर नहीं दिख रहा है।
बैटिंग तो बिल्कुल नहीं होगी और कप्तानी का दबाव इसलिए भी नहीं है क्योंकि उनकी जो ग्राउंड के ऊपर रेपो है महेंद्र सिंह धोनी के साथ, उसने उस पर असर नहीं होने दिया। तो जब आपके साथ ऐसी आपस में आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो तो वो दबाव वैसे भी नहीं आना, लेकिन उनकी बल्लेबाजी पे तो मुझे लगता है कि जब जैसे ही फील्डिंग खत्म होती है ना, उन्हें सिर्फ एक ही चीज याद रहती है कि मैं इस टीम का सबसे बढ़िया बल्लेबाज हूँ।
अब भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच होगा 19 जनवरी को कटक में, उसके बाद 22 जनवरी को मुकाबला होगा कोलकाता में। खेल की दुनिया से फिलहाल इतना ही।
और कार्यक्रम में अब इससे पहले कि आपसे विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर से सुनने का वक्त आ चुका है।
बीबीसी समाचार। चुनाव आयोग ने फैसला किया है कि समाजवादी पार्टी और इसके चुनाव चिन्ह पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का अधिकार है। जर्मनी और फ्रांस के नेताओं ने अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद यूरोप का बचाव किया है। दरअसल ट्रंप ने ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के फैसले की प्रशंसा की और कहा कि उन्हें यकीन है कि दूसरे देश भी ऐसा करेंगे। जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने कहा है कि यूरोप की एकता ही ट्रंप की टिप्पणी का सबसे मुकम्मल जवाब होगा। एरोस्पेस कंपनी रोल्स रॉयस का कहना है कि रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों में ब्रिटेन, अमेरिका और ब्राजील के अधिकारियों के साथ $8 अरब के समझौते के लिए वह सैद्धांतिक तौर पर तैयार हो गई है। मेक्सिको के किंटाना रू राज्य के प्लाया देल कारमेन में एक संगीत समारोह के दौरान एक बंदूकधारी की गोलीबारी में 5 लोगों की मौत हो गई। तुर्की की मीडिया के मुताबिक नए साल के मौके पर इस्तांबुल में एक नाइट क्लब में हमले का मुख्य संदिग्ध को इस्तांबुल के एसनीरुत जिले में गिरफ्तार कर लिया गया है। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के संक में बस इतना ही। आज स्टूडियो संभाल रहे थे देवाशीष। रोहित वेमुला से जुड़ी कहानियों को पढ़ने के लिए bbchindi.com पर आएं, जहां पर ये सामग्री उपलब्ध है। शाम 7:30 बजे दिनभर लेकर उपस्थित होंगे। मोहनलाल शर्मा को विदा दें, नमस्कार।